ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने सनातन सेवा समिति के गठन की घोषणा की। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े दो विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया और भारत मंडपम में चल रहा 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव अंतिम चरण में। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री रहते अपने आधिकारिक आवास पर कथित अत्यधिक खर्च के मुद्दे पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी भाजपा दोनों आमने सामने हैं। इस मुद्दे पर दोनों ही दलों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक रिपोर्ट।
भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाती आ रही है कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपने आवास की साज सज्जा और सुविधा पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार इस आरोप को खारिज कर रही है। आज पार्टी नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री आवास तक मार्च किया और मांग की।
दिल्ली में एक ही कोरोना के समय के दौरान मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास सरकारी पैसे से बने हैं, तो आज मीडिया के जरिए लोगों को मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास दोनों के दर्शन करा दिए जाएं।
वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करते समय आम आदमी पार्टी नेताओं के आचरण पर भी आपत्ति जताई।
जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है, इसे अब वो बचा नहीं सकते।
इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने सत्ता में आने पर शहर में लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा देने का वादा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी पार्टी ने जहां भी शासन किया है वहां स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
इतनी शानदार योजना है जो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं परिवार को, 25 लाख का बीमा राजस्थान में जो है बहुत कामयाब हुआ है।
इन तीनों प्रमुख दलों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की घोषणा की है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर आज जनकपुरी और कृष्णानगर के आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों ने सांसद हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास पार्टी के नेताओं के प्रति खत्म हुआ है।
आज बहुत से साथियों ने ज्वाइन किया है, वो प्रमुख लोग हैं जो उनकी आम आदमी पार्टी के मुख्य नेताओं में से। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास पार्टी के कार्यकर्ताओं में खत्म हुआ है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने टीएमसी की संस्थापक ममता बनर्जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएलएस वाज ने आज विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता और चुनाव व्यय निगरानी उपायों के कार्यान्वयन पर पार्टियों को जानकारी देना था। बैठक के दौरान श्रीमती वाज ने आदर्श आचार संहिता के पालन के महत्व पर जोर देते हुए राजनीतिक अभियानों, नैतिक प्रथाओं और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने वाली गतिविधियों के निषेध के लिए प्रमुख दिशा निर्देशों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अभियान के खर्च में पारदर्शिता बनाए रखने और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने सनातन सेवा समिति के गठन की घोषणा की है। इस अवसर पर श्री केजरीवाल ने आज भाजपा के मंदिर प्रकोष्ठ के कई सदस्यों को इस समिति की सदस्यता प्रदान की। पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक 18,000 रूपये की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का उल्लेख भी किया। श्री केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की है उसको चुनाव के बाद पूरा किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े दो विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। विधेयकों को आधिकारिक तौर पर 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। संवाददाताओं से बातचीत में समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि समिति सभी हितधारकों के विचार जानेगी, चाहे वे कानूनी विशेषज्ञ या न्यायपालिका के सदस्य हों, नागरिक समाज के सदस्य हों या कोई राजनीतिक दल हों। उन्होंने कहा कि समिति सभी के विचार जानने के बाद आगे बढ़ने का फैसला करेगी। बैठक के दौरान विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के प्रतिनिधियों ने सदस्यों को प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। 39 सदस्य समिति में 27 सदस्य लोकसभा से और 12 राज्यसभा से हैं। ये समिति अगले संसद सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू है। इसे देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 13,000 से ज्यादा होर्डिंग्स और 1,00,000 से ज्यादा पोस्टर हटाए हैं। निगम ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगे लगभग 8,000 झंडे और बैनर भी हटाए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर खास रिपोर्ट पेश कर रहा है। इसी कड़ी में कालकाजी विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता सकलेन अख्तर की रिपोर्ट।
इस विधानसभा चुनावों में लोगों की सबसे ज्यादा नजर अगर कुछ सीटों पर है तो उनमें कालकाजी विधानसभा क्षेत्र सबसे प्रमुख है, जहां आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री आतिशी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर दक्षिणी दिल्ली से दो बार सांसद रहे रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने चुनावी दंगल में उतार कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे कालकाजी क्षेत्र में पिछले दो विधानसभा चुनावों से आम आदमी पार्टी भाजपा को पटखनी देते आ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आतिशी ने इस सीट पर 52% से ज्यादा वोट हासिल कर भाजपा के धर्मवीर सिंह को शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार भाजपा ने अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। लगभग 2,00,000 मतदाता वाले दक्षिणी दिल्ली की इस सीट पर पार्किंग, सड़कें और जाम की समस्या जैसे मुद्दे जनता के बीच काफी चर्चा में हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि 2013 से लगातार दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी इस सीट पर जीत दर्ज कर पार्टी के हैट्रिक बनाती हैं, या फिर कालकाजी की जनता कुछ उलटफेर करने वाली है।
वहीं आयकर विभाग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए बेहिसाब नकदी, सोना और अन्य कीमती सामानों की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए 2400 घंटे चलने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। वहीं विभाग ने एक टोल फ्री नंबर 1800111309 भी जारी किया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति राजधानी में नकदी, सोना और कीमती धातुओं की संदिग्ध आवाजाही या वितरण के बारे में जानकारी दे सकता है। विभाग ने बताया है कि नियंत्रण कक्ष में सूचना देने वालों को कोई भी व्यक्तिगत जानकारी बताने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में आदर्श आचार संहिता की पूरी अवधि के दौरान ये नियंत्रण कक्ष कार्यात्मक रहेगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि भारत अपनी भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विविधता के कारण अपने व्यंजनों को वैश्विक बनाने की क्षमता रखता है। आज ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री पासवान ने ये बात कही।
भारत विविधताओं का देश है, इन विविधताओं को दुनिया के हर कोने तक लेकर जाएं। इस सोच के साथ मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और विविधताओं में सबसे ज्यादा विविधता अलग अलग व्यंजनों के माध्यम से भारत प्रदान करता है। और मैं मानता हूं कि स्वाद किसी सरहदों का मोहताज नहीं होता। दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पर भारतीय व्यंजन हो, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
श्री पासवान ने यह भी बताया कि देश भर में 100 नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार केंद्र और निजी उद्योगों की नीतियों के बीच एक सेतु बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडस फूड एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो है। ये व्यापार शो वैश्विक व्यवसायों को भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करता है। इस आयोजन में 180 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों समेत 1,800 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी के भारत मंडपम में चल रहा 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव अंतिम चरण में है। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में देश भर के 300 से अधिक शिल्पकार और कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आंध्र प्रदेश के आसिफ शेख ने अपने उत्पादों को बड़ा मंच देने के लिए सरकार का धन्यवाद किया है।
मैं आसिफ हूँ, आंध्र प्रदेश तिरुपति से आया हूँ। हम इधर पे ग्रामीण भारत महोत्सव में स्टॉल लगा हुआ है। हम ग्रामीण भारत महोत्सव को, हमारे नाबार्ड को बहुत धन्यवाद कहते हैं।
वहीं महोत्सव में 1,00,000 रुपए से अधिक कीमत की साड़ियां बेच रही महाराष्ट्र के नागपुर की गौरी दीवते ने बताया कि उनकी हाथ से बनी साड़ियों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
मेरा नाम गौरी नारायण दिवटे है। मैं महाराष्ट्र स्टेट के नासिक जिले से एवला गांव से आई है। मैं यहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव में अपने महाराष्ट्रीयन पैठनी और उसके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ बेचने में आई हूँ। ये हमको यहाँ लाने के लिए और मार्केटिंग के लिए इतना सब नाबार्ड ने हमें दिया, उसलिए हमका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।
इस महोत्सव का विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए विशेष गीत का लोकार्पण किया।
जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ, मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ।
गीत के लोकार्पण समारोह में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन के महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ उपस्थित थीं। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करते महाकुंभ 2025 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। भीड़ नियंत्रण के लिए महाकुंभ क्षेत्र में 7,000 ग्रामीण बसें और 350 शटल बसें लगाई जाएंगी। मुख्य स्नान के दिनों में सुव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन के लिए प्रयागराज के आसपास से आने वाली बसों को बाहरी मेला क्षेत्र में स्थापित 8 अस्थायी बस अड्डों से संचालित किया जाएगा। तत्काल मदद के लिए लोग टोल फ्री नंबर 1800 180 2877 2877 और व्हाट्सएप नंबर 9415049606 से जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कल का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने सनातन सेवा समिति के गठन की घोषणा की। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े दो विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया और भारत मंडपम में चल रहा 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव अंतिम चरण में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।